सनस जाति बोले, मैं अव्यक्त हृदय से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है और जिसे पाकर मनुष्य पुरुष मन मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात इनमें अपना ममत्व नहीं रखते। धृतराष्ट्र ने कहा कि यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जाना जा सकती है तो पहले मुझे ये बताओ कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है। सनत सुजाति बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर उनकी सेवा से उनके अंतरंग भक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यहां वे ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग स्वरूप होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में रहकर जो संपूर्ण कामनाओं को जीतते हैं वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यद्यपि माता और पिता ये दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि जो गुरुजन हैं वे आत्म तत्व का उपदेश कराते हैं। वह परम पवित्र और अजर अमर उपदेश है जो परमार्थ तत्व के उपदेश से असत्य को जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं, उन आचार्यों को माता पिता ही समझना चाहिए और उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वो सदा गुरुजनों को प्रणाम करे। भीतर बाहर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में लगे, अभिमान न करे, मन में कोई क्रोध को स्थान न दे, ये ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता है और पवित्र विद्या प्राप्त करता है उसका यह नियम है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन वाणी और कर्म से आचार्य का प्रिय करे वो द्वितीय पाद कहलाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण बर्ताव हो ऐसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए, यह भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया है उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ है उसका भी विचार करके मन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया है, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र जावे ही नहीं, विद्यालय को छोड़कर जावे ही नहीं, कुछ न कुछ दक्षिणा देकर या सेवा करके जाए। कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूं, तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात न कहे। ये ब्रह्मचर्य का चौथा चरण है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु के निकट शिक्षा और सदाचार का एक चरण प्राप्त करता है, कैसी गहरी बात है, फिर उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा दूसरे पाद का ज्ञान करता है, तत्पश्चात अधिक काल तक मनन करने से वह तीसरे पद का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर शास्त्र के द्वारा सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करने से वह चौथे पाद को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त 12 धर्म आदि जिसके स्वरूप है तथा दूसरे यम नियम आदि जिसके अंग व उत्साह शक्ति बल है वह ब्रह्मचर्य आचार्य के संपर्क में रहकर वेद के अर्थ का तत्व जानने से ही सफल होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके उसे आचार्य के अर्पण कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा की जिस अमृत और अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं, उसका स्वरूप क्या है? क्या वह सफेद सा, लाल सा अथवा काजल सा, काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का होता है? सत्य, सत्य का रंग पूछते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है? काला होता है, पीला होता है? सनत सुजाती, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में है। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण कर सकता। ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है, न बादलों में दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा आदि सूर्य में वह नहीं दिखाई देता। ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह दृष्टिगोचर नहीं होता। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसमें लीन हो जाता है। वह रूप उस तरह के धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है। सनत सुजाति कहते हैं, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, मद, ईर्ष्या, लोभ, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्य के प्राणनाशक हैं। एक एक करके भी ये दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिससे आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मनी मन क्रोध करने वाले, अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय क्रूर स्वभाव वाले हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते, विषयों में मन लगाते हैं, विषमता का बर्ताव करते हैं, अत्यंत अभिमानी है, थोड़ा देकर बहुत डींग हांकने वाले हैं। कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले हैं। स्त्रियों से सदा द्वेष रखने वाले ये 7 प्रकार के मनुष्य पापी और क्रूर कहे जाते हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय संयम, दाह न करना, लज्जा, सहनशील, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य, क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान धर्म होते हैं। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, ये अमृत की स्थिति है। इस प्रकार से बहुत विस्तार के साथ ज्ञान दिया। हे धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं और सबका आत्मा भी मैं हूं। जो है वह भी मैं हूं, जो नहीं है वो भी मैं हूं। मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पिता मैं हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। तुम सब लोग मेरी आत्मा में स्थित हो, फिर भी न तुम हमारे हो, न हम तुम्हारे हैं, न तुम्हारा हमसे संबंध है, न हमारा तुमसे संबंध है। क्यों? क्योंकि आत्मा एक एक है, आत्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आत्मा ही मेरा स्थान है, आत्मा ही मेरा जन्म है। मैं सब में ओतप्रोत, सबकी और अपने नित्य नूतन महिमा में स्थिर हूं। नजर कहा, अपनी नजर महिमा में स्थित हूं। नजर माने नवीन महिमा। मैं अजन्मा, चराचर स्वरूप, दिन रात सावधान रहने वाला हूं। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। इस प्रकार का उपदेश दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते करते राजा युधिष्ठिर की सारी रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही देश देशांतर से आए हुए सब राजा लोग भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाल्लिक, विदुर और युयुत्सु ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विविंशति ने कुरुराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय के मुख से पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। सभा में पहुंचकर सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसन पर बैठ गए। इतने में ही द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज संजय सभा में पधारने के लिए आज्ञा चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय के लिए ही ये सभा इकट्ठी हो रही है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और सबका अभिवादन किए। सबने संजय का कुशल क्षेम पूछा और संजय ने सबके कुशल क्षेम सुनाने के बाद कहा, हे कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूं। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथायोग्य कहा है, बड़ों को प्रणाम और छोटों का कुशल क्षेम पूछा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय मैं ये पूछना चाहता हूं कि वहां सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राणदंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था। संजय ने कहा, महाराज वहां श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे उन्हें कुरुराज दुर्योधन सावधानी के साथ सुने। उन्होंने कहा है, जो काल के गाल में जाने वाला मंदबुद्धि महामूढ़ सूतपुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हांकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा कर्ण को सुनाकर तथा राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार से कहना जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा पूरा सुन सके। क्या आप सभी अर्जुन के संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं? गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित जान पड़ता था। उसने आंखें लाल करके कहा है, यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी और आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है, इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पांडवों की हित दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो संजय युद्ध होने दीजिए। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म रक्षा और बल इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य बोलते हैं, सत्य ही बोलेंगे, और आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते आए हैं और करते रहेंगे। किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे उस समय उस क्रोध को आप बर्दाश्त कर लेंगे क्या? दुर्योधन को पूछना कि उस क्रोध के प्रवाह को सहन करने में तुम समर्थ हो? जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन को बड़े वेग से क्रोध रूप विष उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य ही दुर्योधन को पश्चाताप करना पड़ेगा। जिस प्रकार फूस की झोपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, ऐसी दशा कौरवों की देखकर बिजली मारे हुए खेत के समान अपनी विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेन की शस्त्राग्नि को झुलसकर कितने ही वीरों को धराशायी और कितने ही को भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छोड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। संजय, ये बात मैं आत्म प्रशंसा से नहीं कहता हूं। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्धस्थल में शत्रुओं के सिरों की ढेरी लगा देगा, उस लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओं का संहार करता हुआ शकुनि पर आक्रमण करेगा, तब पूछना कि तुम्हारे उन पासों का क्या हालचाल है। और जब दुर्योधन द्रौपदी के महान दुर्धर शूरवीर और रथयुद्ध विशारद पुत्रों को कौरवों पर झपटते देखेगा तो उसे उस युद्ध ठानने के लिए अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण के समान बलि है। जिस समय वह शस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान बाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधन को रण रोपने के लिए अवश्य पछतावा होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेनापति धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को पश्चाताप करना पड़ेगा। जब कौरवों में अग्रगण्य संत शिरोमणि महात्मा पितामह भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे, तो मैं सच कहता हूं मेरा कोई शत्रु संसार में नहीं बच पाएगा, इसमें तुम तनिक भी संदेह मत करना। जब अतुलित तेजस्वी सेनानायक धृष्टद्युम्न अपने बाणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे, तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना पड़ेगा। सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सात्यकी जिस सेना के नेता हैं, उसके वेग को शत्रु कभी सहन नहीं कर सकेंगे। तुम दुर्योधन से कहना, अब तुम राज्य की आशा छोड़ दो, अब तो तुम्हारे और मृत्यु के बीच में जितना दिन बाकी है केवल उतने दिन तुम ऐश आराम कर लो, क्योंकि हमने शिनी के पौत्र युद्ध में अद्वितीय रथी महाबली सात्यकी को अपना सहायक बना लिया है। सात्यकी सर्वथा निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में पारंगत है। जिस समय दुर्योधन रथ में गांडीव धनुष श्री कृष्ण और उनके दिव्य पांचजन्य शंख घोड़े दो अक्षय तूणीर देवदत्त शंख और मुझको देखेगा, उस समय उस दुर्योधन को युद्ध के लिए पछतावा होगा। जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए उन लुटेरों को नष्ट करके नवीन युग को प्रवृत्त करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों के सहित महाराज धृतराष्ट्र को भी बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई सेना तथा सेवकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर मंदमती बैरियों के हाथ से मार खाकर कांपने लगेगा। उस समय रोने से क्या फायदा होगा। मैंने वज्रधर इंद्र से ये वर मांगा है और वर में यही मांगा है कि इस युद्ध में कृष्ण मेरे सहायक हों। एक दिन मैं पूर्वाह्न में जप करके बैठा था, एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, अर्जुन कह रहा है, किसको? संजय को। संजय बोल रहे हैं कहां धृतराष्ट्र की सभा में कि अर्जुन ने एक घटना सुनाई है। अर्जुन ने कहा, एक दिन पूर्वाह्न में मैं जप करके बैठा था कि एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, बोलो तुम क्या चाहते हो। उच्चैःश्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे आगे चले, अथवा सुग्रीवादी घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चले, दोनों में से तुम क्या चाहते हो। उस समय मैंने वज्र प्राणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण का वर्णन किया था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे कृष्ण मिल गए हैं। डाकू कौन? कौरव। संजय, इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है ये देवताओं का किया हुआ विधान है, भला कृष्ण हमको कहां से मिल सकते थे। मैं जानता हूं कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी मुझे वो प्रेम से देखेंगे, मैं उनके प्रेम से उनका दर्शन करूंगा, मेरा तो इतने में ही काम हो जाएगा। और कृष्ण यदि मन से किसी के जय का अभिनंदन करने लगेंगे तो शत्रुओं को अवश्य परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण का मन कभी भी असत्य की ओर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का संकल्प हो तो देवता और इंद्र भी भस्म हो जाते हैं, फिर मनुष्यों की बात ही क्या है। इन श्री कृष्ण ने आकाशचारी सौभयान के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्व से युद्ध किया था और सौप के दरवाजे पर ही शाल्व की छोड़ी हुई शतग्नि को हाथ से पकड़ लिया था, भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पितामह भीष्म, पुत्र सहित आचार्य द्रोण और अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा उसका निधन धर्मतः निश्चित हो जाएगा, धर्म से मारे जाएंगे वो। कौरवों, मैं कुंती नंदन अर्जुन तुमसे स्पष्ट कहता हूं, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन यदि बच सकता है तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है, युद्ध करने पर कभी आपका जीवन नहीं बचेगा। ये निश्चित है कि संग्राम भूमि में कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा, पिछला सारा क्रोध प्रकट करूंगा। जितना क्रोध का वेग युधिष्ठिर ने सहन किया है वो सारा का सारा क्रोध युद्ध भूमि में उगल दूंगा। शत्रुओं के संहार में हमें निश्चित रूप से सफल मनोरथ होंगे, ऐसा हमारा हृदय बोलता है। अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण को भी इसमें कोई संदेह नहीं है। संजय, मैं किसी भावावेश में नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़ी सावधानी से और अपनी बुद्धि को स्थिर करके मैं देख रहा हूं और बोल रहा हूं। मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा दिखाई दे रहा है, मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालता है, मैं अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थूणाकर्ण, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र इत्यादि अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि ये मेरा दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी। अतः उन्हें यही करना चाहिए। जो वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और विदुर जी कहे, वैसा करने पर ही कौरव लोग जीवित रह सकेंगे, नहीं तो द्रौपदी के दृश्य को याद कर उत्पन्न होने वाली हमारी क्रोधाग्नि के अंदर सब भस्म होने वाले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र उस समय डर गए, कांपने लग गए, इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे, उनके आंखों से भय के आंसू आ रहे थे। सभा में बैठे हुए सभी राजा लोग स्तब्ध हो गए। संजय का भाषण समाप्त तो होने पर उस सभा में शांतनुनंदन भीष्म ने खड़े होकर दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा देवादि देवगण, इंद्रादि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त को आकर्षित करते हुए और सबको लांग कर चले गए। बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं और लांग करके जा रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने बताया, देख करके ये प्रबल पराक्रमी महाबली नरनारायण ऋषि हैं जो अपने तेज से पृथ्वी और स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों को आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान और शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हो, वो दोनों कौन हैं? इस युद्ध में जो अर्जुन है वो नर है और श्री कृष्ण है वो नारायण है। अब तुम खुद ही विचार कर लो कि क्या ये युद्ध तुम्हारे लिए हितकर होगा। अर्जुन की बात से क्या तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे? इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। दुर्योधन, श्री कृष्ण नारायण, अर्जुन नर, इन दोनों के संयोग को देखकर तो मन में श्रद्धा प्रेम उमड़ना चाहिए, पर तुम्हारा ऐसा कहां हृदय है? भैया दुर्योधन, जिस समय तुम शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए श्री कृष्ण को और अनेकों अस्त्र शस्त्र और भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक रथ में बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आएगी। आज तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हो। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना, कौरवों का अंत आ गया है। तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो चुकी है। तुम्हें तो तीन ही की सलाह ठीक मालूम पड़ती है। एक तो ये तुम्हारे पास बैठा हुआ अधम जाति सूत पुत्र कर्ण की बात, दूसरा तुम्हारे पीछे बैठा हुआ सबल पुत्र शकुनी की बात और तीसरे तुम्हारे पास बैठा हुआ पापात्मा भाई दुशासन की बात। इतने में ही कर्ण बोल उठा, पितामह आप जैसी बात कर रहे हैं मैं आप जैसे वयोवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती है। मैं क्षात्र धर्म में स्थित रहता हूं और कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार आपने देखा कि जिस कारण भरी सभा में आप मेरी निंदा और उपहास कर रहे हैं? मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है और अकेले में युद्ध में सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कर्ण की ओर देखा और कुछ परवाह से नहीं की और धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, सुना महाराज, कर्ण जो सदा ही ये डींग हंकार रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है उसमें ये दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारे पुत्र मंदमति दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर पांडवों का तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग अलग ऐसे दुष्कर्म कर्म किए हैं वैसा ही सूत्र पुत्र कर ही नहीं सकता है। मैं पूछता हूं सूत पुत्र ने और ऐसा कौन सा पराक्रम का काम किया? कर्ण भूल गए तुम जब विराट नगर में अर्जुन ने उसके सामने अपने प्यारे भाई को मार डाला तो उसने उसका क्या कर लिया? महाराज धृतराष्ट्र ध्यान से सुनिए, जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, उस समय कर्ण कहां चला गया था? कहां उसकी वीरता थी? घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय कर्ण कहां किस गुफा में छिपा रह गया? अब तो बड़ा बैल की तरह गरजता है। वहां भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, कर्ण बड़ा बकवादी है, इसकी सब बातें उसी तरह झूठी हैं जैसा वो अभी बोलकर अपनी डींग हांगता है। ये तो धर्म और अर्थ दोनों को चौपट कर देने वाला है। भीष्म की बात सुनकर महामना आचार्य द्रोण ने उनकी प्रशंसा की और राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज भरत श्रेष्ठ भीष्म जैसा चाहते हैं वैसा करो। जो लोग अर्थ और काम के गुलाम हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना अच्छी बात मानता हूं। अर्जुन ने जो बात कही और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है मैं सब उसको समझता हूं। अर्जुन अवश्य ही वैसा करेगा, उसके समान तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। इस बात को मैं जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। राजा धृतराष्ट्र ने न तो भीष्म की बात पर परवाह की, न द्रोणाचार्य के कथन पर कोई ध्यान दिया और वे संजय से पांडवों का ही समाचार पूछने लगे। संजय, हमारी विशाल सेना का समाचार पाकर राजा युधिष्ठिर ने क्या कहा? युद्ध के लिए वे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रों में से कौन कौन आज्ञा पाने के लिए उनके मुख की ओर ताकते रहते हैं? संजय ने कहा, महाराज न तो आपने मेरी बात पर ध्यान दिया न आपने अर्जुन की बात पर ध्यान दिया न आपने भीष्म और द्रोण की बात पर ध्यान दिया, अब और बात को सुनकर क्या करोगे? नहीं संजय, मुझे बताओ क्या किया? हमारी सेना आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने क्या कहा? महाराज, संजय बोलते, महाराज, राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर तो पांडव और पांचाली दोनों ही कुटुंबों के लोग देखते ही रहते हैं। आप सोचते होंगे कि भाई लोग आपस में युधिष्ठिर से उलाहना देते होंगे, ऐसा मैंने उनके चेहरे के भाव से बिल्कुल नहीं समझा है। वे एक है, एक मत है, जो युधिष्ठिर की आज्ञा है उस सब को भी माला की तरह धारण करते हैं। अब आपन कोई माला पहना हुआ यूं करे, माला की तरह धारण करते हैं। ग्वाली और गडरिये से लेकर पंचाल, केकय और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ये तो बताओ, पांडव लोग ऐसा कौन सा बल पा गए जिसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं? ऐसी क्या ताकत है उनके पास? संजय ने कहा, राजन, पांडवों के पक्ष में जो योद्धा सम्मिलित हैं उनके नाम सुनिए। आपके साथ युद्ध करने के लिए वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है, हिडंब राक्षस भी उनके पक्ष में है, भीमसेन तो अपने बल के लिए प्रसिद्ध है ही, वारणावत नगर में उन्होंने पांडवों को भस्म होने से बचाया था, उन्होंने गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम के राक्षसों का विनाश किया था, भीमसेन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उन्हीं महाबली भीम के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अर्जुन के पराक्रम को तो कोई वाणी से कह ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण के साथ अकेले अर्जुन ने ही अग्नि की तृप्ति के लिए युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इन्होंने युद्ध करके साक्षात देवादिदेव त्रिशूलपाणि भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अर्जुन ने ही समस्त लोकपालों को जीत लिया था। उन्हीं अर्जुन को साथ लेकर पांडव आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। आपका प्रश्न बड़ा अटपटा है, पांडव किसकी सहायता से चढ़ाई करेंगे? पांडवों की लोग सहायता मांगते हैं, वे पांडव किसकी सहायता लेंगे? वे अपने आप में इतने सबल हैं कि दूसरे के सहायता की जरूरत नहीं है। जिन्होंने म्लेच्छ से भरी हुई पश्चिम दिशा को अपने अधीन कर लिया, वे तरह तरह के युद्ध करने वाले वीर नकुल भी उनके साथ, और जिन्हें काशी, अंग, मगध और कलिंग देशों को युद्ध में जीत लिया था, वे सहदेव आप पर आक्रमण करने में पूर्ण समर्थ है। पितामह भीष्म के वध के लिए जिसे यक्ष ने पुरुष कर दिया था, वह शिखंडी भी बड़ा भारी धनुर्धारण किए पांडवों के साथ है। केकय देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं, वे भी कवच धारण करके आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। सात्यकी कितनी फुर्ती से शस्त्र चलाता है, उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा। जो अज्ञातवास के समय पांडवों के आश्रय बने थे, उन महाराज विराट से युद्ध स्थल में आपकी भेंट होगी। महारथी काशीराज भी उनकी सेना में सम्मिलित हैं। आप पर चढ़ाई करते समय वे बड़े उत्साह के साथ आपकी सेना के अंदर घुस जाएंगे। जो वीरता में कृष्ण के समान और संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान है, उस अभिमन्यु के सहित पांडव लोग आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। शिशुपाल का पुत्र एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुआ है। जरासंध के पुत्र सहदेव और जयत्सेन ये रथ युद्ध में बड़े पराक्रमी हैं। वे भी पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। महातेजस्वी द्रुपद बड़ी भारी सेना के साथ पांडवों के लिए प्राणांत युद्ध करने के लिए तैयार है। क्यों? कि द्रौपदी इन्हीं की प्यारी पुत्री है और उस द्रौपदी का बर्ताव, द्रौपदी के प्रति आप लोगों का किया हुआ बर्ताव सबके हृदय को जला रहा है। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशा की ओर भी सैकड़ों राजा पांडवों के पक्ष में हैं, जिनकी सहायता से महाराज युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय है, यों तो तुमने जिन जिन वीरों का उल्लेख किया है सब बड़े बड़े उत्साही हैं, ये तो मैं जानता हूं। फिर भी एक ओर उन सबको मिलाकर समझो और दूसरी ओर अकेले भीम को समझो। मुझे भीम से रात दिन डर लगता है, जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीम से डरकर रात भर गरम गरम सांसें लेता हुआ जागता रहता हूं, चैन नहीं पड़ता। संजय, कुंती पुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, कट्टर शत्रुता मानने वाला, सच्ची हंसी करने वाला, उन्मत्त, टेढ़ी निगाह से देखने वाला, भारी गर्जना करने वाला, महान वेगवान, बड़ा ही उत्साही, विशाल बाहु, बड़ा ही बल वाला है। वह युद्ध करके मेरे अल्प शक्ति वाले पुत्रों को मार डालेगा। उसकी याद आने पर मेरा दिल धड़कता है। बचपन में जब मेरे पुत्र उसके साथ खेल में युद्ध करते थे, तब वह मेरे पुत्रों को उठा उठाकर पटकता था और अपनी कोहनी से उनको मसलता था। उस समय कभी कभी दुर्योधन, दुशासन आदि जोर से चिल्लाते थे, तब कोई जाकर उनको आपस में छुड़ाता था, तो ऐसा देखता था कि जैसे भीम के ये सदा के शत्रु हों। वह भीम रणभूमि में जब क्रोध करेगा, अपनी गदा से रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े सभी को कुचलना चालू करेगा, वो दृश्य बड़ा भयानक होगा। वह मेरी सेना के बीच में होकर रास्ता निकालेगा, उसके पास पहुंचने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। उसे इधर उधर भगा दे ऐसा कोई नहीं है। वह तो अपने हाथ में गदा लेकर रणभूमि में नाच करेगा, उस समय प्रलय मचा देगा। देखो, मगध देश के राजा महाबली जरासंध ने सारी पृथ्वी अपनी वश में करके संतप्त कर रखी थी, किंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण के साथ उनके अंतपुर में जाकर उसको कुश्ती में मार डाला। भीमसेन के बल को मैं नहीं, ये पितामह भीष्म जानते हैं, द्रोणाचार्य जानते हैं, कृपाचार्य जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने पर तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था वो आज सामने आ गया। इस समय कौरवों पर जो महान विपत्ति आने वाली है उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। संजय, मैं बड़ा मंद बुद्धि हूं, हाय, ऐश्वर्य के लोभ से मैंने ये महान पाप कर डाला। संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, समझ में नहीं आता है। ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर जा रहे हैं। हाय, 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों के रोने की आवाज सुननी पड़ेगी, तब भी ये मौत तो मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने आचरणों से इतना अपवित्र हो गया हूं कि मौत भी मुझे छूने से अपवित्र हो जाएगी। जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से ये गदाधारी भीम मेरे सारे पुत्रों को मार डालेगा। संजय, मैंने तुम्हारी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं जानता हूं आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठी बात नहीं सुनी, और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी, तो भी अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह है, इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को जीत चुका है संजय, वह कहीं हारा हो ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसके समान है वे कृष्ण उसके सारथी बनेंगे। जिस समय मैं रणभूमि में रोष पूर्वक पहने पहने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता की रचे हुए सर्वसंहार काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं निरंतर कौरवों के संहार और फूट की बात सुनूंगा, ये मर गया वो मर गया वो मर गया, ये सुनते सुनते मैं ये युद्ध को देखूंगा। देखने का अर्थ यहां सुनने सही है। कितना विनाश होगा भरत वंश का संजय। जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक है, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पंचाल, केकय, मत्स्य और मगध देशीय राजाओं के नाम लिए, किंतु उनसे मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन जगत स्रष्टा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित सभी लोकों को अपने वश में कर सकते हैं। उन कृष्ण ने भी पांडवों के विजय का निश्चय कर लिया है। क्या करूं संजय, बहुत घबराहट हो रही है। सात्विकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है, वो भी अर्जुन का ही शिष्य है। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न तो बड़ा शस्त्रज्ञ है, और वह अपने बहन के अपमान का बदला लिए नहीं छोड़ेगा। वो भी मेरे पक्ष के वीरों के साथ युद्ध भूमि में उतरेगा। संजय, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप, अर्जुन के पराक्रम और नकुल सहदेव के युद्ध कौशल तथा भीमसेन के भयंकर बल से बड़ा ही भय लगता रहता है। क्या करूं, युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और अग्नि के समान तेजस्वी है, ऐसा कौन मूड है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिए हे कौरवों, मेरी बात सुनो, मैं तो उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, और तुमको भी सलाह देता हूं उनके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं है। युद्ध करने पर तो निश्चय ही सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है, और ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको युद्ध न करना ही ठीक मालूम हो, तो हम अब संजय को दोबारा संधि के प्रस्ताव के लिए उनके पास भेज देते हैं। संजय ने कहा, महाराज बहुत अच्छा हुआ, आप बड़ी पवित्र बात कह रहे हैं, मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये कुरु जांगल देश तो पैतृक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पांडवों की जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर ये भूमि आपको भेंट की है, परंतु आप इसे अपनी विजय मानते हैं। जब गंधर्व राज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ने ही छुड़ाकर मुक्ति दी थी। बाण छोड़ने वालों में पहले नंबर अर्जुन के हैं संसार भर में। धनुषों में गांडीव धनुष सबसे श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, और ध्वजाओं में बानर चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के पास है, अर्थात अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। भरत श्रेष्ठ निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन है, ये सारी पृथ्वी आज उसी के अधीन है। संजय बोलकर चुप हो गए। अब आगे दुर्योधन खड़े होकर बोलेंगे, वो प्रसंग कल चलेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन